सो प्रभु का धन्यवाद हो। आपको मालूम है कि हमने प्रेरित काम की सीरीज को आरंभ किया ईस्टर के बाद, हम उसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले इतवार को हमने प्रेरित काम उसका दूसरा अध्याय और उसके 14 पद से लेकर के 36 पद तक हमने देखा था। आज हम आगे बढ़ेंगे, दो मुख्य और बिंदु पर विचार करेंगे, सुसमाचार प्रति हमारा प्रति उत्तर, और फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है रिजल्ट ऑफ द गॉस्पल। हम इस बात को पिछले दिन में देख रहे थे किस प्रकार से यहाँ पर प्रचार किया जा रहा था, और प्रचार के समय में कैसे पहले 120 लोग थे और उसके बाद धीरे धीरे किस प्रकार से भीड़ बढ़ गई थी और बहुत ही सारी भीड़ इस वचन को सुन रही थी, सुसमाचार को सुन रही थी, और किस प्रकार से पतरस से खड़े होकर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा उस वचन को पाया और वचन को प्रचार किया। और मेरे प्रिय, आप जानते हैं जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी, आज्ञा या निर्देश दिया था कि तुम यहीं ठहरे रहना, पहला अध्याय उसके 8वें पद में प्रतिज्ञा दी थी कि तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे, यरूशलम, सामरिया, यहूदिया और दुनिया के छोर छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर को, परमेश्वर की दया में वो प्रतिज्ञा पूरी होती है, और ना केवल कलीसिया की स्थापना होती है लेकिन परमेश्वर की सामर्थ लोगों को मिलती है, और परमेश्वर की सामर्थ पतरस को मिल रही है। अब पतरस सबसे पहले साक्षी दे रहा है, गवाही दे रहा है और सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। तो परमेश्वर की सामर्थ जो है केवल आश्य कर्मों में नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ केवल अन्य भाषाओं में नहीं है, वो एक भाग हो सकता है, हमें समझना है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ सबसे बढ़कर के परमेश्वर के गवाह बन करके उसके सुसमाचार को समझना, उसके सुसमाचार को जानना, उसके सुसमाचार पर विश्वास करना, उसके सुसमाचार की उद्घोषणा करना या दूसरों के साथ स्पष्टता के साथ बांटना, शेयर करना है। क्या सच में आपके जीवन में वो सुसमाचार है? क्या सच में आपके जीवन में सुसमाचार कार्य करता है? सबसे बड़ी संपन्नता जो है धन की नहीं है, धन तो नाश हो जाएगा। आज कितने बड़े बड़े धनवान लोग हैं जिनके पास धन है, सब कुछ है, कोरोना बीमारी से कितने अधिक भयभीत हैं। अभी पिछले दिनों में हमारे देश में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत उन्होंने नाम कमाया, धन कमाया, सब कुछ कमाया, लेकिन सब धन छोड़ कर चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा धन था उन्होंने प्राप्त नहीं किया, वो धन उनके पापों की क्षमा का धन, वो धन जो उनके उद्धार का अनुभव है वो नहीं प्राप्त किया। सो सबसे बड़ा धन जो है संपन्नता मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन करके उस पर विश्वास करके उस जीवन को प्राप्त करना है जो अनंत जीवन है। केवल रोटी कपड़ा मकान या बीमारी चंगाई पाना यही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह को जाना है। और प्रभु अनुग्रह करे आज जितने लोग सुसमाचार को सुन रहे हैं वे जाने क्या उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन का व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है या नहीं किया। सो यहाँ पर वो प्रचार कर, हमने पिछली बार देखा था कि उसके प्रचार का मुख्य विषय था यीशु कौन है, और तब हमने देखा था जब वो प्रचार कर रहा है तो वो ये कह रहा है ये यीशु मसीह भी है और प्रभु है जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला था, जिसको तुमने क्रूस पर, बार बार वो क्रूस का वर्णन करता है। पिछले दिनों में मैं किताब पढ़ रहा था, डॉक्टर जॉन स्टॉट की है, बहुत अच्छी किताब है, द क्रॉस ऑफ द क्राइस्ट, और उन्होंने उस क्रूस के बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि क्रूस चार मुख्य बातों को प्रदर्शित करता है। पहला है न्याय को, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर न्याय को सहा है, वो न्याय जो मुझको और आपको सहना था उससे सहा है। दूसरी चीज, क्रूस परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करता है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपने प्रेम को प्रदर्शित किया, जो प्रेम सबसे बढ़कर था, इसीलिए वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से अर्थात मुझसे और आपसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। न्याय तो हमारा होना था, दंड तो हमारा होना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस दंड को या न्याय को अपने स्वयं को ले लिया। सो पहला न्याय है, दूसरा प्रेम है, तीसरा बुद्धि है, विजडम। क्रूस सच्चे विजडम को प्रकट करता है, सच्ची बुद्धि को प्रकट करता है, और पौलुस बड़े स्पष्टता के साथ इस बात को समझाता है, अपनी क्रुंथी की पत्री है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। मैं एक दो स्थलों को पढ़ना चाहूंगा, पहला क्रुंथियों उसका 18 पद, वो कहता है क्योंकि क्रूस की खता नाश होने वालों के लिए तो मूर्ता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। वो लोग जो क्रूस की कथा को नहीं समझते, वो लोग जो क्रूस की कथा को तिरस्कारते हैं या क्रूस की कथा को समझौते में ले आते हैं कि ओ प्रभु हमारे लिए बात सब कुछ बलिदान कर दिया, जीवन दे दिया, उसे सब कुछ कर दिया, अब तुम उस पर विश्वास करो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, सब कुछ मिलेगा, ये भी मिल जाएगा वो मिल जाएगा, वो ये नहीं है। इसीलिए सच्ची बुद्धिमानिता क्या है? सो क्रूर सस्ती विजडम को प्रकट करता है, सच्ची बुद्धि को प्रकट करता है। अभी हम और देखते हैं तो यहाँ पर कहता है, लोग कह रहा है कि परंतु हम उद्धार पाने वाले, जिन्होंने उद्धार पाया है उनके लिए वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। आगे जब 23 पद से कहता है, इसी अध्याय में पहला अध्याय 23 पद से, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं। ये पत्रस क्या प्रचार कर रहा था? पत्रस यही प्रचार कर रहा था, तुमने उसको क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। मेरे प्रियो, आज हमारे प्रचार का विषय प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। क्रूस केवल घर में टांग लेने से नहीं, क्रूस केवल गले में टांग लेने से नहीं, क्रूस हमारे जीवन में होना है और उस क्रूस के अर्थ को समझना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरे योग्य नहीं हो सकता। सो ये कह रहा है कि परंतु हम तो क्रूस का, उस क्रूस का जिस पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, जिसने अपने न्याय अपने जीवन में मेरे और आपके बदले में न्याय सह लिया, जिसने अपने प्रेम को उस क्रूस पर प्रकट किया, यह जो यहूदियों की दृष्टि में ठोकर का कारण और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है, परंतु उसके लिए जो बुलाए हुए हैं, चाहे वे यहूदी हों चाहे यूनानी, मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। 25वां पद, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से अधिक बलवान है। और तब वो दूसरे अध्याय के पहले 5 पदों में क्या कहता है, पहला क्रंथियों दूसरा अध्याय पहले 5 पद, भाइयों जब हम तुम्हारे पास परमेश्वर के विषय में गवाही देता हूं मैं आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। यीशु मसीह, कौन सा यीशु मसीह? जो क्रूस पर चढ़ाया गया। कितने आज संसार में यीशु मसीह को एक अच्छा टीचर मानते हैं, गुरु मानते हैं। कितने लोग हैं, हाँ ठीक है जैसे दूसरे थे वैसे मानते हैं। कितने लोग कहते हैं, हाँ यीशु मसीह था लेकिन क्रूस पर नहीं मरा था। कई तरह की मिथ्याएं या शिक्षाएं या सब कुछ है, लेकिन हमें समझना है बाइबल किस यीशु की बात करती है। बाइबल उस यीशु की बात करती है जो यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसने मेरे और आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उसने क्रूस की निंदाई मृत्यु को सह लिया, पीड़ा को सह लिया। और पौलुस बार बार कहता है कि हम उस यीशु का प्रचार करते हैं जो क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे प्रियो, मेरा और आपका विषय वो यीशु है जो मेरे और आपके लिए, संसार के पापों के लिए, जगत के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है। वो कहता है कि चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और मैं किसी बात को ना जानूं। कोई ज्ञान नहीं, कोई शब्द का वो नहीं, कोई और चीज नहीं, हम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है उसको मुझे और आपको जानना है। कितना हम जानने का प्रयास करते हैं, कितना वो मेरे और आपके जीवन में कार्यकारी है। तब आगे कहता है, मैं निर्बलता के और भय के साथ थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। पौलुस कह रहा है, मेरा संदेश और मेरा प्रचार ज्ञान लुभाने वाले शब्दों में नहीं था, परंतु आत्मा की सामर्थ्य के प्रमाण में था, जिससे कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर आधारित हो। ज्ञान नहीं लेकिन परमेश्वर की वो बुद्धि। हम तो ज्ञान बहुत सारी किताबों को पढ़ करके, संदेशों को सुन करके, बहुत चीज को देख करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, लेकिन ये विजडम, ये समझ, ये बुद्धि जो है वो परमेश्वर की बुद्धि है, जिसने संसार को देखते हुए उस बुद्धिमानता में होकर के उस सारी चीज को पूरा किया और क्रूस पर बलिदान हुआ। तो जॉन स्टेट अपनी पुस्तक में लिखते हैं तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं कि उसकी मसीह की, यीशु की बुद्धिमानता थी, किस बुद्धिमानता में होकर के उसने अपने आप को बलिदान किया, तो उसकी बुद्धि को, स्वर्गीय विजडम को प्रकट करता है। और तब चौथी बात, सामर्थ को, वो सामर्थ जिसमें होकर उसने न केवल बलिदान का कार्य पूरा किया, वो सामर्थ जिसमें होकर के वो मुर्दों में से जिलाया गया, वो मारा गया, गड़ा गया, लेकिन वो मुर्दों में जिलाया गया, मृत्यु पर उसने सामर्थ को प्रकट किया और विजय को प्राप्त किया। सो ये क्रूस, हम उस क्रूस का प्रचार करते हैं और उसी सामर्थ में होकर मुझे और आपको एक आशा मिली है कि एक विश्वासी जन जिसने यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जिसने पापों की क्षमा को पाया है। मेरे प्रियो, यदि मैं और आप इस संसार में मर भी जाएं, चाहे कोरोना की बीमारी से, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे किसी रीति से, कैसी अचानक हार्ट अटैक से, किसी रीति से, लेकिन हमारे को मालूम है कि प्रभु की सामर्थ्य में होकर हमने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। न केवल यीशु ने विजय प्राप्त की है, लेकिन यीशु में होकर मैंने और आपने विश्वास करने वालों के लिए ने भी विजय प्राप्त की है। सो ये क्रूस की कथा है, ये क्रूस का सच्चाई है, ये क्रूस का अधिकार है और ये उसको प्रचार कर रहा है और मुझे और आपको भी उस क्रूस को समझना है। काश प्रभु मेरे और आपकी सहायता करे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की जब क्रूस पर हम दृष्टि करते हैं, वो मुझे और आपको सामर्थ्य प्रदान करती है, वो मुझे और आपको बल प्रदान करती है, वो मुझे और आपको साहस प्रदान करती है, वो मुझे और आपको आनंद प्रदान करती है और हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हम उस यीशु की क्रूस की ओर देखते हुए और अधिक आनंद के साथ, विजय के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। काश प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि इन दिनों में चाहे हम कठिनाई में हैं, शायद आप समस्या में हैं, अपने परिवार रीति से चिंताओं में हैं, कल क्या होगा, चाहे शायद बहुत सारे लोग हैं, कई सारी चीज नौकरी के बारे में, इस समय बहुत सारे लोगों की नौकरी जा रही है, बहुत सारे लोगों का काम बंद हो रखा है, बहुत सारी कुछ है। मेरे प्रियो, परेशान होइए, परमेश्वर आपके साथ है और सचमुच में आप उस क्रूस पर दृष्टि कीजिए, परमेश्वर आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा, वो सामर्थ्य जिसमें आपका विश्वास बढ़ेगा, जिसमें आपका आनंद बढ़ेगा, जिसमें आपका उत्साह बढ़ेगा। आप प्रभु को देखेंगे, उस क्रूस को देखेंगे और आपको प्रभु कोई ना कोई रास्ता निकालेगा जिससे आप आगे बढ़ सकें। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्ता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है और यही पत्रस प्रचार कर रहा है और वही मेरे और आपके जीवन का भी भाग है। तब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जब ये खड़ा होकर प्रचार कर रहा था तो 37 पद से तब हम किस रीति देखते हैं कि अब इन लोगों का, जब उसने क्रूस के बारे में प्रचार किया, पिछले इतवार को हमने बहुत ध्यान से देखा था और अंत में वो कहता है प्रेरित काम उसके दूसरे अध्याय में वापिस आएंगे, कहता है 36 पद में, इसलिए इसराइल का संपूर्ण घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर से प्रभु और मसीह दोनों ही ठहरा, इसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था। जब उन्होंने उस यीशु के बारे में सुना जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, कैसे परमेश्वर ने उसको जलाया, कैसे परमेश्वर ने उठाया, कैसे उसने परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया, कैसे उस स्वर पर जला गया, कैसे उसकी प्रतिज्ञा पूरा आएगी, कैसे उसने मेरे और आपके लिए एक सहायक को दे दिया जो पवित्र आत्मा जब तक पुनः ना आए वो मेरे और आपके साथ इस संसार में रहे और वो पवित्र आत्मा मुझे और आपको बल, सामर्थ्य, उत्साह, विश्वास, निश्चयता प्रदान करे जिसमें होकर हम मसीह जीवन में आगे बढ़ सके। मेरे प्रियो, आप गाँव में रह रहे हैं, हमें नहीं मालूम कल में आपके सामने कितने भाई बहन हैं जो गांव में, गांव की मंडली में, कलीसिया में। शायद आप चिंतित होंगे, परेशान होंगे, कल क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है, सतावनी आती है, परेशानी आती है। ये तो केवल महामारी आई है, इससे बढ़कर सतावनी आती है। मसीह को सताया जा सकता है, मसीह को बंदी गृह में डाला जा सकता है, झूठे दोष लगाए जाते हैं, आपकी कलीसिया को बंद करने के प्रयास किया जाता है, लोग आपको पीटेंगे, सबको जानेंगे। लेकिन अगर आपने जो आपके जीवन में क्रूस की कथा सच्चाई के साथ घर बस गई है तो कोई आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं करने पाएगा। आप चाहे जेल खाने में रहेंगे तब भी आप प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे, आनंद से उसकी जय जयकार करेंगे। कोई हमारे कपड़े को उतार सकता है, कोई हमारे शरीर के स्किन को काट सकता है, खाल को काटता है, लेकिन जो अंदर दिल में यीशु अगर बस गया है उसको कोई नहीं निकाल सकता। और काश इन दिनों में आप सबके अंदर वो विश्वास हो सके कि यीशु आपके मन की गहराई में, यीशु आपके मस्तिष्क की गहराई में बस सके और आप यीशु पर विश्वास कर सके, उसके क्रूस पर विश्वास कर सके, केवल चंगाई या दूसरी चीजों पर निर्भर ना रहें। यीशु मसीह को जाने जो पाप क्षमा करके सच्चा जीवन और आनंद का जीवन देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपकी सहायता करें। अब 37 पद से लेकर के 41 पद तक हम कुछ बातों को देखते हैं। क्या कह रहा है वो, उनका रिस्पॉन्स, उनका प्रतिउत्तर। जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना तो उनका रिस्पॉन्स क्या है, क्या लिखा 37 पद में, उन्होंने जब ये सुना उनके हृदय छिद गए। ये रिस्पॉन्स था, क्या सुना, तुमने यीशु को क्रूस पर चढ़ा के मार डाला, वो तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, तुमने तो पाप किया था, तुम्हें दंड मिलना था। और परमेश्वर वचन कहता है सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूर तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है जो प्राणी पाप करे निश्चय मर जाएगा। मेरे प्रियो, इस संसार में कोई भी व्यक्ति निष्पाप नहीं है। पाप का स्वभाव आपके अंदर है, मेरे अंदर है, पाप का चरित्र मेरे और आपके अंदर है, पाप की आदतें मेरे और आपके अंदर हैं। और मेरे प्रियो, एक दिन प्रभु ने मुझे छुड़ाया, आप में से बहुत हैं, आप लोग छुड़ाया, लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे होंगे जिनको ये अनुभव नहीं है। सो काश आपके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करे। और जब उन्होंने यीशु के संदेश को सुना कि यीशु एकमात्र उद्धार करता है, यीशु मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है ताकि वो मेरे और आपके पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ जाए, मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन जूठे, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब उन्होंने सुन लिया तो कहते क्या है, उनके हृदय छिद गए। छिदने का मतलब क्या है, एक कन्विक्शन है, कायलता है। क्या जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं आपके हृदय में कोई कायलता उत्पन्न होती है, कोई पाप को लेकर के, कोई बुराई को लेकर के, कोई गंदी आदत को लेकर के, कोई संबंध को लेकर के, कोई और चीज़ को लेकर, शायद आप चोरी करने हैं, शायद आप सही जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, शायद परमेश्वर के साथ आपकी संगति नहीं है, आप वचन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, आप संसार में तो हैं लेकिन प्रभु के विश्वास कहते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है आपका, आपकी दैनिक जो आत्मिक जीवन वो सही नहीं है, आपका परिवार में पति पत्नी के साथ संबंध नहीं है, बच्चे अनाज्ञाकारी हैं, कैसे क्या परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हैं आपको कैल करता है, कन्विट करता है, क्या आपको वो आपके पाप दिखाता है? और यौना में प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले 16 अध्याय में कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा होगा, और पवित्र आत्मा क्या करेगा, तुम्हें पाप से कैल करेगा। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा मेरे और आपके पाप को के प्रति कैल करता है। ये यहाँ पर हो रहा वो आज भी होता है। प्रश्न ये है क्या वो आपको कन्विक्ट कर रहा है? आज कौन सी जगह है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन आपके ऊपर उंगली रख रहा है और आपको कैल कर रहा है? कह रहा है जब उनके हृदय छिद गए तब क्या हुआ? उन्होंने कहा तब उन्होंने पत्रस और अन्य प्रेरित पूछने लगे भाइयों क्या करें? अरे हमने जान लिया कि हम पापी हैं, हमने जान लिया हमने परमेश्वर का तिरस्कार किया है, हमने जान लिया हमने रीति विधियों के द्वारा अपने भले कामों के द्वारा अपने दूसरी चीजों द्वारा हमने सोचा कि हमें उद्धार मिल जाएगा, हमारे पापों की क्षमा मिल जाएगी, हमने बहुत भ्रमण किया, बहुत पैसा खर्चा किया, बहुत कुछ कोशिश करी, चर्च में गए, इधर गए उधर गए, बहुत कुछ किया, लेकिन हम जान गए कि नहीं इससे उद्धार नहीं है, हमने उद्धार नहीं पाया, हम अभी भी पापी हैं। तो पूछने लगे हम क्या करें? कितना अच्छा हो कि आप आज प्रभु से पूछ सकें प्रभु मैं क्या करूं, कितना अच्छा हो शायद जो सेवक आपके साथ हैं आप उनसे बात कर सकें कि भैया मुझे बताइए मुझे क्या करना है, क्या करना है? और तब उसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या करना है। तो वो कहता है 38 पद में, पहली बात हम क्या करें, अब मुझे क्या करना चाहिए? पतरस कहता है मन फिराओ। ये संदेश यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का संदेश था, ये संदेश पुराने नियम में पुराने यर्मिया और यशाया का था संदेश था जब उसने इसराइलों को बार बार संदेश दिया मन फिराओ। ये संदेश यीशु मसीह के द्वारा दिया गया जब यीशु मसीह ने सेवा को आरंभ करी, मत्ती मरकुस लूका को आप पढ़िए पहले 3 अध्याय में आपको यही मिलेगा मन फिराओ। मेरे प्रियो मन फिराना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम पुराने जीवन से पुराने पापी स्वभाव से पुरानी आदतों से मन फिरा के हम यीशु के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कहते हैं प्रभु जी मेरे पाप को क्षमा कीजिए। मेरे प्रिय होस्त आज आप परमेश्वर वचन सुन रहे हो, आप अपने एकांत में आप कमरे में बैठ करके प्रभु से परमेश्वर के सामने जाकर कहते हैं प्रभु मेरे पर दया कीजिए, मैं जानता हूँ मैं जानती हूँ, चाहे होस्त आप युवा हो जवान हो, होस्त आप बुजुर्ग हो, होस्त आप प्रभु जी आप कार्य करने वाले हो या मध्य उम्र में हो, कोई भी हो, बच्चे हो छोटे हो बड़े हो, अगर आपने वचन सुना है तो आप कहते हैं प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मैं अपने पापी जीवन के लिए आज मैं मन फिराने तैयार हूँ। जानिए विश्वास करिए जब सच्चाई से आप प्रभु के पास आएंगे मन फिराएंगे पश्चाताप करेंगे प्रभु पर विश्वास करेंगे अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। प्रभु का वचन कहता है जो अपने पापों को मान लेता है उसे छोड़ देता है उस पर दया कही जाएगी। यदि हम अपने पापों को मान लें तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जितने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर आपको एक निश्चयता प्रदान करेगा। सो ये कहता है मन फिराओ और तब मन फिराने का मतलब विश्वास करो, उन्हें परमेश्वर का वचन को सुना है। परमेश्वर वचन कहता है रोमी 10:17 में विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन के द्वारा। जब उन्होंने वचन सुना उनके हृदय में विश्वास जागृत हुआ। आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं क्या आपके जीवन में क्या आपके मस्तिष्क में क्या आपके मन में विश्वास जागृत हो रहा है? और जब उन्होंने वचन सुना सचमुच में ये उनके अंदर विश्वास हुआ और विश्वास परमेश्वर के वचन से। हम मैं बार बार उसको दोहराता हूँ, हम कानों से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मस्तिष्क से उसको समझते हैं, हृदय से हम ग्रहण करते हैं, मुंह से फिर हम अंगीकार करते हैं, जीवन से उसको प्रदर्शित करते हैं। काश प्रभु सहायता करे कि ये चीज आपके जीवन में भी होने पाए। और तब वो कहता है यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक बपतिस्मा ले, विश्वास करो। ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन को हमें समझना है। कई बार ये वचन इस तरह से आते हैं तो ऐसा लगता है ओहो ठीक है बपतिस्मे बाद में पापों की क्षमा, नहीं नहीं नहीं, पापों की क्षमा मन फिराने के द्वारा प्रभु को अपने जीवन का स्वीकार करने द्वारा उस पर विश्वास द्वारा क्षमा मांगने द्वारा पापों की क्षमा देते। जैसे हम अभी वचन पढ़ रहे थे जो हमारे विश्वास वचन है उस पढ़ रहे थे कि बपतिस्मा हमें उद्धार नहीं दिलाता लेकिन बपतिस्मा एक बाहरी प्रमाण है जिसके द्वारा हम इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, अब हम उसके साथ जीवन व्यतीत करने तैयार हैं। पहला काम विश्वास करके पाप क्षमा करके उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, तब उसके बाद बपतिस्मा कदम है। मेरे प्रिय भाई बहनों यदि आपने विश्वास नहीं किया और शायद ऐसी बपतिस्मा ले लिया तो बपतिस्मा बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मे के द्वारा पाप क्षमा नहीं होता, पाप क्षमा के बाद हम बपतिस्मे की शक्ति देते हैं। इस बात का प्रमाण है, समय नहीं तो हम उन स्थलों को और देखते हैं जो बपतिस्मे बारे में बाइबल में कई सारे रेफरेंसेज हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहेंगे कुछ रेफरेंस को आप लिख सकते हैं मत्ती 3:13-17 पद तक, प्रभु यीशु मसीह का आदर्श जिसने बपतिस्मा लिया। मत्ती 28:18-19 पद, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें शिष्य बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा दो। रोमियों उसके 6:1-4 पद तक, बपतिस्मा क्या है, किस रीति से हम बपतिस्मे द्वारा मसीह में मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और फिर से जलाए जाते हैं। रोमियों उसके 6:1-4 पद तक। 1 कुरिन्थियों 12:13 पद, बपतिस्मे द्वारा हम मसीह की देह में जुड़ जाते हैं, उसकी कलीसिया में जुड़ जाते हैं। स्थानीय कलीसिया में जुड़ना अनिवार्य है, जिसको हम स्थानीय कलीसिया में सदस्यता बोलते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। आने दिन में उसके बारे में भी देखेंगे कैसे कब, वो बहुत जरूरी है और ये स्थानीय कलीसिया को सम्मान देना है, लेकिन हमें परमेश्वर की देह में जुड़ जाते हैं, ये बहुत जरूरी है। गलतियों उसका 3:23 पद, 1 पत्रस 3:21 पद, किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को पूरी से। तो ये कुछ रेफरेंसेज हैं जो बपतिस्मे में घर में आप जा करके अध्ययन कर सकते हैं और बहुत ज़रूरी हैं। सो यदि आपने विश्वास किया है तो आपको बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। परफेक्ट नहीं होता आदमी, लेकिन हम धीरे धीरे जब प्रभु में आते हैं तो सिद्धता में आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं सीओ उनके कलीसिया के कई जवान बच्चे हैं जो आने वाले दिन में इस कार्य करना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप प्रार्थना करें, तैयार हों, और आने वाले दिन में जब लॉकआउट खत्म होगा हम जरूर इस कार्य में आगे बढ़ेंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो कहता है पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। पवित्र आत्मा वरदान पत्रस को मिला था, लेकिन पत्रस ने कितनी जगह अन्य भाषा बोली जहाँ सुसमाचार प्रचार कर रहा था। मैं अन्य भाषा के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हमको समझना है जो जो समस्याएं कलीसिया में आती रही, पौलुस उसको देखता रहा, पत्रस उसको देखता रहा, और बाद में उन सारी बातों को देखकर पौलुस ने और पत्रस ने और इसेबको ने उन कलीसियाओं को पत्र लिखी और तब उन्होंने कलीसिया के संचालन को सुधारा है, चाहे किसी भी बारे में अभी हम आगे देखेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, कलीसिया की बढ़ोतरी हो रही है, स्थानीय कलीसिया की बढ़ोतरी हो रही है, सुसमाचार फैलता चला जा रहा है। अब इसके साथ साथ लोगों के अंदर क्या भ्रम उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। तब बाद में उन्होंने अपनी पत्रियों में उन सारे सिद्धांतों को सिखाया है जिसको आज कलीसिया को मालूम करते हुए आगे बढ़ना है और उसी द्वारा कलीसिया मजबूत बनाई गई, दृढ़ बनाई गई है। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से समझ नहीं पाए। जब वे सुन रहे थे उसने पूरे समय तक कितने देर तक वो सारी वचन होता रहा, प्रचार होता रहा और ये करता रहा, समझाता रहा, और तब क्या लिखा हुआ 40 पद में, और बहुत सी बातों से साक्षी देकर वो उन्हें आग्रह करता रहा कि इस कुटिल पीढ़ी से बचो। कौन सी कुटिल पीढ़ी से? जो संसार में नाश होने वाली है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको संसार से निकलना है। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जो सच्चाई के साथ यीशु मसीह पर चल रहे हैं। अब वे परमेश्वर के राज में, परमेश्वर की प्रजा में, दूसरे लोग उसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास वो बुद्धि नहीं है जिस बुद्धि की मैं बात कर रहा था, वो स्वर्गीय विजडम। ये स्वर्गीय बुद्धि है, स्वर्गीय विजडम है, हेवनली विजडम है, स्वर्गीय बुद्धि है, जिसको हम समझते हैं संसार से अलग निकलने का मतलब क्या है, पाप से छुटकारे पाने का मतलब क्या है, परमेश्वर की संतान होने का मतलब क्या है, परमेश्वर को ग्रहण करने का मतलब क्या है। ये परमेश्वर बुद्धि प्रदान करता है और मुझे और आपको और अधिक अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार में प्रियजनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु और अधिक हमें बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि हम वचन की भेद की बातों को समझ सकें, जान सकें, हमारी आंखें खोली जाएं ताकि हम सचमुच में उसके अनुसार आगे बढ़ सकें। तो कहता है सब कुछ हुआ 40 पद, अतः जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया, किसने बपतिस्मा लिया? जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। पहला कदम क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनना। दूसरा कदम क्या है? मन फिराना। तीसरा कदम क्या है? वचन को ग्रहण करना। वचन को ग्रहण करने में सहायता होती है मन फिराने के लिए। मन फिराने के बाद सहायता होती है, हमने पापों को क्षमा पाया, परमेश्वर वचन को और समझा और हमने स्वीकार किया। वचन को ग्रहण करना, क्या परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं? जब कलीसिया में आते हैं, व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन करते हैं, या किसी साथ बैठते हैं, या इन दिनों में जब अकेले हैं, कितना तक आपके अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें? मेरे प्रियो, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ गंभीरता से, हमें नहीं मालूम स्थिति क्या है, कल क्या होता जाए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा है और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस बीमारी को विलेज में ना जाने दें, गांव में ना आने दें, या किसी और के ऊपर ना आने दें, हमारे कलीसिया के लोगों पर, विश्वासियों पर, या और लोगों पर ना आने दें। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, प्रार्थना करते हैं विदेशों के लिए, प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना में बहुत लोगों की प्रार्थना करते हैं और हम प्रभु के प्रेम और दया को चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ये बीमारी आपके ऊपर आ जाए, क्या वचन आपको संभालेगा? क्या आपके अंदर वो वचन है जिसपे आप आनंदित हो सकेंगे, जिसमें आप परमेश्वर का धन्यवाद कर पाएंगे? मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, जरा सी उनके जीवन में उनके मन के अनुसार कोई चीज नहीं आती, उनका चेहरा लटक जाता है, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, इधर उधर हाथ पैर मारने लगते हैं, इधर उधर ये कर लें वो कर लें। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि से सहारा लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहाँ पर भरोसा करके सारे कार्य करना, तो तेरे लिए सीधा मार निकालेगा। जब हम उसके वचन को ग्रहण करने लगते हैं तो हमारा मार्गदर्शक परमेश्वर का वचन करता है, तब हमारी समझ नहीं करती, अरे ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और कितने लोग ऐसी करके गलत जीवन में चले आते हैं, गलत काम कर लेते, उनके जीवन के निर्णय गलत हो जाते हैं। बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, बहुत धर्मी दिखाई देते हैं, बहुत प्रार्थना करने दिखाई देते हैं, बहुत प्रचार करने देते हैं, बहुत कुछ अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर उनके जीवन में गलतियां हैं, अंदर उनके जीवन, क्योंकि उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया, अपनी बुद्धि का सहारा लिया। हमने अपनी जीवन में अनुभव क्या? परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। कितने लोग सेवक लोग कितने ऐसे हैं, मुझे और आपको सावधान रहना है, जब भी कोई चीज आती है कि हम दौड़ कर जाते हैं परमेश्वर वचन, क्या वचन ऐसा कहता है? मैं कई बार अपनी वाइफ से बोलता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, वचन ये सिखाता है, और हमें सीखना इस बात को। इन्होंने वचन ग्रहण किया, मैं और आप कितना अधिक परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं। वचन ग्रहण किया, तब उन्होंने क्या करा? उसी दिन उन्होंने बपतिस्मा लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जहाँ कहीं भी हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, आप आशा में आनंदित रहिए, निराश ना होइए, परेशान। हमारा परमेश्वर निराशा देने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर प्रोत्साहन देने वाला परमेश्वर है। उसने कहा जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, मेरे और आपके साथ रहने वाला। मुझे और आपको आनंदित होना चाहिए, ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो, आप कितने अच्छे परमेश्वर हैं, आपका वचन कितना अच्छा है, आपका वचन कितना सच्चा है, आपके वचन में कितनी प्रतिज्ञाएं भरी हुई हैं, हम आपकी आज्ञा को पालन करने तैयार हैं, आज्ञा के साथ साथ आपकी प्रतिज्ञाएं मेरे साथ हैं। तो निराश ना हो, परेशान ना हो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को मानने तैयार हो। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना और क्या करा? उन्होंने बपतिस्मा लिया और 3,000 लोग उस दिन लगभग समझ गए। क्यों 3,000? 120 से जब वो वहां पर वचन कर रहे दे रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हम सुन रहे हैं, तो बहुत जब वो कलीसिया स्थापित हुई और वो वहां पर अपने भाषण की आवाज होने लगी तो आवाज सुन करके भीड़ लग गई। लिखा हुआ है दूसरे अध्याय में कि वो आवाज सुन करके 6 पद में कि और भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि उस समय, इस बात को समझिए, उस समय वहां पर यरूशलम में जो समय था वो अभी उत्सव का या त्यौहार का समय पूरा नहीं हुआ था। फसह के पर्व के बाद ये 50वें दिन, ये एक और पर्व होना था जिसको हम पिंतेकुस्त का पर्व मानते हैं, जिसको हमने देखा था, और इसलिए बहुत सारे लोग अभी तक यरूशलम में थे। इसके बाद से ये यरूशलम से बाहर निकले और तब सुसमाचार और बाहर फैला है और कई जगह पे कार्य, क्रेते के बारे में, क्रेते के लोग वहां पर थे और तब जाके क्रेते में कलीसिया की स्थापना की। यद्यपि क्रेते में मुश्किल था, क्रेते के लोग अभी तक बहुत सारी चीजों में निर्बल थे, तभी पौलुस तीतुस को वहां एल्डर बनाता है और कहता है क्रेते की कलीसिया को संभाले। इस तरह से और भी बहुत लोग थे जो वहां से निकल के, जिन्होंने अलग अलग जाकर सुसमाचार प्रचार किया और कलीसियाओं की स्थापना की गई। सो हम इस बात को देखते हैं, तब 42 पद से लेकर के 47 पद तक परिणाम को देखते हैं, रिजल्ट को देखते हैं। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ? जरूर वे उनके साथ मिल गए, उस कलीसिया में मिल गए, उस देह में मिल गए, उस परिवार में मिल गए, उस विश्वासी। अभी तक ध्यान दीजिएगा, अभी तक कलीसिया का नाम नहीं आया, पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में कलीसिया का नाम नहीं आया। कलीसिया स्थापित हो गई है, कलीसिया कार्यकारी हो रही है, सुसमाचार काम कर रहा है, लेकिन कलीसिया का नाम अभी तक नहीं आया। 5वें अध्याय में कलीसिया का नाम सबसे पहले आता है, बाद में आगे हम चल के देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी कलीसिया के बारे में कुछ हम नहीं देखते। एनीवे, तब उसके बाद आगे बढ़कर देखते हैं क्या हुआ। तब यहाँ पर करीब 7 चीजें हैं जिनको हम देखते हैं। एक विश्वासी जब विश्वास करता है और विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेता है तो उसके जीवन में ये 7 बातों का होना जरूरी है। जरूर उस समय परिस्थिति कुछ और थी, आज की परिस्थिति कुछ और है, लेकिन बाइबल के सिद्धांत बदलते नहीं, बाइबल के तरीके बदलते नहीं। इसलिए बदल सकती है, कुछ और बदल सकता है, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं बदलता। पहली चीज, और प्रेरित लगातार निरंतर शिक्षा पाने लगे। प्रभु का हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस साधन के लिए जो हम, मेरे और आपके लिए इस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपलब्ध है। अन्यथा शायद अगर ये ना होता तो इन सिन में हम नहीं जानते कैसे हम परमेश्वर के वचन की सेवा करते हैं। लेकिन आज आप लोग कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप अध्ययन करते हैं, कितने लोग अपना कमेंट्स भेजते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि हाँ आपने परमेश्वर के वचन को आज हमारे साथ मिलकर के आराधना में संभागी हुए और सुना है, और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन इसके द्वारा भी हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग शिक्षा को प्राप्त कर सकें। इन दिनों में कितना अधिक बाइबल को आप पढ़ रहे हैं, कितना दिन कोई पुस्तक को पढ़ रहे हैं, कितना दिन आसपास पड़ोस में कोई विश्वासी भाई जो नज़दीक है उसके साथ मिलकर के आप समय दे रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो अपने गांव में रहते हुए जरूर हफ्ते में दो बार किसी ना दो तीन जनों के साथ मिलकर बाइबल को शेयर कर रहे हैं, बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो, काश इस समय में आप किसी एक के साथ बाइबल वचन को शेयर कर सकते हैं। आप टाइम निर्धारित करते हैं आधा घंटा एक घंटा, वो आपके सीखने में मदद करेगा, दूसरों को सिखाने में मदद करेगा। शायद एक घंटा किसी साथ मिलकर के, जरूर कोरोना है, हमारे दूसरे कार्य भी हो रहे हैं, हम मिल भी रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं, क्यों नहीं हम इस शिक्षा को और अधिक फैलाने का काम करते हैं। मेरे बात सहायता करें, किताबों पढ़ने के द्वारा हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं, कलीसिया में नियमित रीति से उपस्थित होने द्वारा हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं। बाइबल अध्ययन जो साप्ताहिक बाइबल अध्ययन है, बहुत सी कलीसियाओं में बाइबल अध्ययन नहीं चलता, प्रार्थना मीटिंग चलती है, वो भी जरूरी है प्रार्थना मीटिंग, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ बाइबल अध्ययन बहुत जरूरी है। और मैं बार बार सियोन की जो मंडलियां हैं उनसे मैं बोलता हूं, यदि आपके बीच में आपके यहाँ वचन अध्ययन हफ्ते में नहीं है, चाहे पांच जनों चाहे दस जनों, अभी तो परिस्थिति दूसरी फर्क है, लेकिन अभी भी आप चार पांच जन मिलकर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मेरे प्रियो ये सच है आपकी कलीसिया बढ़ेगी नहीं। इसीलिए यहाँ से उनमें हमेशा बुधवार को नियमित से परमेश्वर के वचन का अध्ययन होता है। शुरू से हमने इस बात को सीखा, वचन को सीखना है, वो निरंतर शिक्षा पाने में लगे रहे, निरंतर प्रेरितों के साथ विश्वास साथ शिक्षा पाने में। मेरे और आपके अंदर कितनी इच्छा रहती है, बाइबल अध्ययन का समय होता है, हमारे काम है, हमारा व्यवसाय है, हमारी नौकरी है, हमारा बिजनेस है, हमारा कुछ है। मैं कई लोगों से कहता हूँ, अब बताइए जो कोरोना में सब कुछ बंद है तो क्या कह रहे हैं, क्या प्रभु आपको सिखा रहा है, क्या इसके बाद आप निर्णय लेंगे, इसके बाद मैं अपने काम को अपने सब कुछ को व्यवसाय को जो कुछ भी है मैं एक घंटे के लिए बंद करूंगा और परमेश्वर के वचन के अध्ययन में जाऊंगा, प्रार्थना में जाऊंगा। क्या परमेश्वर से आप इस कमिटमेंट कर रहे हैं? भला हुआ ये कष्ट मेरे ऊपर आया जिससे मैंने यहोवा की व्यवस्था का पालन करना सीखा, भला हुआ। मेरे प्रियो प्रभु आपकी मदद करे तो आप निराशा से बचेंगे बल्कि आप आशा में आनंदित होंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात तो कहता है शिक्षा पाने, संगति रखने और अधिक हमें करना है। इब्रानियों उसका 10 अध्याय में हम बहुत सुंदर रीति से करीब चार पांच बातों को देते, 22 से 25 तक, वहाँ परमेश्वर के समीप आए, फिर उसके बाद न केवल परमेश्वर के समीप आए, अपने अंगीकार को उन्होंने थामे रहा, जो विश्वास था जो उन्होंने क्रूस पर यीशु के बलिदान पर पापों की क्षमा के साथ विश्वास किया था, अंगीकार किया था यीशु ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसको थामे रहे। इसके साथ साथ प्रेम और भले कामों में बढ़ते रहे, एक दूसरे साथ प्रेम और भले कामों में, इन दोनों में प्रेम कितना अधिक। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, कितने लोगों से इन दोनों में आपने कलीसिया के किसी जन से फोन करके पहल करके आपने हालचाल पूछे? यह आप ये प्रेम की बात है, जिस कलीसिया में आप हैं, जिस परिवार में आप हैं, जिस गांव में आप हैं, जिस शहर में आप हैं, क्या आपने उनसे हालचाल पूछे? अगर नहीं, आप अपने भी मस्त हैं, ज़रूर आप कैसे हैं, भाई आप कैसे हैं, बहन आप कैसे हैं, आंटी आप कैसे हैं, अंकल आप कैसे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करें। ये प्रोत्साहित करना है, ये प्रेम और भला काम है। किस प्रकार से हम भले कामों को, बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन संगति में रहते हैं, ना केवल ये लेकिन इकट्ठा होते हैं। और कहता है जैसे जैसे समय आ रहा है प्रभु यीशु मसीह का आगमन और अधिक इकट्ठा होना सीखे। तीसरी बात, रोटी तोड़ना, ये बहुत जरूरी है। आरंभिक समय में इस रोटी तोड़ने को लोगों ने बहुत ही हल्का कर दिया था, घर घर मिल रहे थे और घर घर के भोज करते थे और उसको उन्होंने केवल एक खाने पीने और रोटी तोड़ने का समय बना दिया था। यद्यपि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इसका निर्देश दिया था वो उसके बलिदान संबंध था, लेकिन उन्होंने इसको इतना हल्का बना दिया था। इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों में कलीसिया और पत्र लिखते हुए ये समझाता है कि जब तुम प्रभु की भूमेन में सहभागी होते हो क्या इन बातों को ध्यान में रखना है। मेरे प्रियो अभी हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि हम अपने अपने अलग अलग स्थानों में हैं, हम इस रोटी को हल्का नहीं करना चाहते। प्रभु जरूर हम चाहेंगे जैसे हमें मौका मिलेगा हम इकट्ठा होकर इसमें सहभागी होंगे। हम उस काम को नहीं करना चाहेंगे जो किसी रीति से भ्रमित हो और अविश्वासी और दूसरे लोग भी हमारे द्वारा उसमें सहभागी हो सकें। हम इसकी पवित्रता को जानते हैं, हम इसकी गंभीरता को जानते हैं, हम इसके महत्व को जानते हैं और परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को जानते हैं। कई लोग घर में जाके एक रोटी एक लेके बांट देते हैं। मेरे प्रियो हमें समझना है इस बात को, बहुत ही धीरज समझना है कैसे कब क्या है और इसकी गंभीरता को लेना। और उस समय ये रोज कर रहे थे और रोज करते, आज इस घर में कल उस घर में उस घर में, और उन्होंने एक भोज बना दिया था और भोज बना के साथ ठीक है, लेकिन बाद में ये बहुत ही भ्रम का कारण बन गया था और इससे कलीसिया में नुकसान होता। तब पौलुस ने सुधार किया। हमें भी इस बात को समझना है, लेकिन कलीसिया में रूप प्रभु भोज में सहभागी होना बहुत जरूरी है। आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए, आपको अपने आप को जांचना चाहिए, आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जीवन की जो निर्मलताएं दूर हो और पवित्रता के साथ गंभीरता के साथ इसमें सहभागी होना चाहिए ताकि दिन पर दिन प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, उसका पवित्र लहू आपको शुद्ध करे। लहू शुद्धता को प्रकट करता है, पवित्रता को प्रकट करता है, उसकी सामर्थ को प्रकट करता है, उसकी दया को प्रकट करता है, उसके अनुग्रह को प्रकट करता है, वो चीज़ आपके और मेरे जीवन पाए जाए और हम उन बात को करके उस लहू में शामिल हो सकें और उसकी देह में जो मेरे और आपके लिए तोड़ी गई, जिसमें उसने मेरे और आपके लिए क्रूस पर कस सहा, वो न्याय को सहा, उसको हमें समझना है, उस दंड को सहा उसने अपनी क्रूस पर उस देह के तोड़े जाने के द्वारा, हम उसकी गंभीरता को समझ सकें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, जब भी हमें अवसर मिले, जैसे ही ये लॉकडाउन हटेगा, हमारा विश्वास है हम इकट्ठा होकर साथ मिलकर के हम कुछ बातों को जरूर करना चाहेंगे और हम बड़ी विग्रता से उसकी बड़ी अपेक्षा से आशा से उसके दिन की बाट जो रहे हैं। हाँ, अगर प्रभु हमें उठा ले इस संसार से तो हम उसके साथ राज करेंगे और फिर वहाँ प्रभु स्वयं होगा, तब हमें वहाँ जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब तक प्रभु ना आए, आगे चल के प्रार्थना करने में लौलीन रहे। पिछले दोनों में जो इन प्रेयर करी, हम धन्यवाद देते हैं सारे विश्वासी भाई बहनों का कि आप सहभागी हुए। आने वाले लास्ट बुधवार को हम फिर उसी तरह से करेंगे और हमें अन्य लोगों के साथ एक दूसरे साथ मिलकर प्रार्थना करना है। वो कह रहे लौलीन रहे, लगे रहे प्रार्थना करने में, लौलीन रहे, ये समय है, उठते बैठते चलते फिरते। तो चार ये चीज है, ना केवल चार, विश्वासी मिलजुल करके रहते थे, सब वस्तु साझी की थी, मिलजुल कर रह रहे हैं, ये विश्वासी मिलजुल कर रह रहे हैं। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, सब उन्होंने देखा उसको सेपरेट हो गए थे। कारण क्या था? वो संसार से सेपरेट हो गए थे, दे वर सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, और इसलिए उन्होंने इकट्ठा एक समुदाय बना लिया और समय। लेकिन वो दिन ज्यादा नहीं चल पाया प्रैक्टिकल, उन्हें फैलना पड़ा, उन्हें कुछ और करना पड़ा, लेकिन कुछ समय तक वे एक साथ रहे, एक दूसरे की चिंता करते थे। कोई भूखा तो नहीं है, किसी पास गमी तो नहीं है, किसी पास कपड़े की कमी तो नहीं है, किसी पास ऐसा तो नहीं है। मेरे प्रियो, आप कहीं भी हैं, आप होशता है, आपको कम तनख्वाह मिलती हो, कम पैसा मिलता हो, आप अपने आप गरीब समझते हो। अगर आप अपने आप को गरीब समझते हैं तो आपसे भी कोई दूसरा गरीब है। ऐसे समय में, इस समय में कई लोग कहते हैं, अरे हम कैसे प्रभु को दे देंगे, कैसे प्रभु दे। लोगों से मत कहिए कि वो प्रभु को दे, क्यों ना कहें भाई, परमेश्वर वचन क्या सिखाता है? परमेश्वर वचन सिखाता है मसीह कंगाल नहीं है। और ऐसे समय में हम अपने प्रेम को, क्योंकि उस धन के द्वारा किसी ना किसी की सेवा हो सकती है, हमें और अधिक करना है। ये लोग ये कर रहे थे, इन्होंने करा और सिद्धांत बना हुआ, आगे तक सिद्धांत आगे बना हुआ है जिस बात को होगा। मेरे प्रियो, अगर आप अपने आप को हमेशा घटी में सोचते रहते हैं, आप संतुष्टि का जीवन नहीं है और आपके अंदर कुड़कुड़ाहट रहेगी, आपके अंदर असंतुष्टता रहेगी और आप स्वयं अपनी प्रार्थना में स्वयं रुकावट कारण होंगे। प्रभु कहता है, अगर मैं अनर्थ सोचता तो प्रभु मैंने मेरी ना सोचता, मैं बेचारा, मेरे पास ये नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है। मैं कितने लोग बैंक में पैसा जमा करते जाते हैं और अपने आप की कंगाली दिखाते हैं, गलत है। परमेश्वर जानता है आपके अंदर सच्चाई नहीं है। हमें मूर्ख नहीं बनना, लेकिन हमें कंजूस भी नहीं बना, हमें लालची भी नहीं बना, ये भी पाप है। हमें लोभी नहीं बना, लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। हमने किसी की कुछ मदद कर दी, अपने दशवांश में से काट दिया, गलत है, ये मत करिए। परमेश्वर के वचन को समझिए। ये लोग एक दूसरे की चिंता करते थे, एक दूसरे की सहायता करते। अच्छा है प्रभु, धन्यवाद हो अगर आप किसी सहायता कर पा रहे हैं, प्रभु और भी मदद करे कि आप कर सके। और तब साथ ही बात क्या कहता है, वे परमेश्वर की स्तुति क्या करते, सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रतिदिन प्रभु उनसे मिला दिया था। वे परमेश्वर के, उनका धन्यवाद का जीवन था, उनकी आराधना का जीवन था, उनकी उपासना का जीवन था। जब आप निराश हो, जब आपका विश्वास डगमगाए, आप प्रभु की आराधना करना शुरू कर दीजिए, भजन को खोल दीजिए, भजन पढ़ना शुरू कर दीजिए, घुटने के बल होकर और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। और तब परमेश्वर गुणों को देखते हुए, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आप मेरे सृष्टि करता है, आप मेरे पालन करता है, आप मेरी चिंता करने वाले परमेश्वर है। आपने कहा है, क्या एक माँ दूध पी ले बालक को छोड़ सकती है? हाँ, वो तो छोड़ देगी, लेकिन मैं ना तुझे छोड़ूंगा, मैं ना तुझे दबाऊंगा। आपने कहा, जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे सुधीर लूंगा, मेरी सहायता करूंगा। और मेरे प्रियो, सचमुच में जब आपके जीवन में आराधना का आत्मा आएगा, जब आपके जीवन में स्तुति का आत्मा आएगा, प्रभु आपको उत्साहित करेगा, आप आनंदित होंगे, उस निराशा से निकलेंगे, परमेश्वर के सामर्थ को पाएंगे और अधिक यीशु मसीह के सुसमाचार को आप प्रचार करेंगे और अधिक लोगों के साथ संगति के लिए आपकी लालसा होगी और अधिक प्रभु में आप बढ़ेंगे, तब आपका कुड़कुड़ाहट का जीवन, दोषारोपण का जीवन और दूसरे को नीचा दिखाने का जीवन खत्म हो जाएगा। आप अपने परिवार को उत्साहित करके प्रभु के साथ आगे बढ़ने पाएंगे। मेरे प्रियो, ये दिन आपका, बच्चों को सही सिखाइए परमेश्वर की आराधना करना, कैसे परमेश्वर की आराधना की जाती है। मेरे पिछले दिनों में किसी ने मुझसे फोन पे बात करी कि हमारे स्कूल में हम छोटे छोटे बच्चों को बाइबल के पद देते हैं, तो उसको मालूम चला कि हमने ये पद दानियल के और ये पद प्रार्थना दिए, तो उसने अपने स्कूल में उन बच्चों को दिया कि देखो इससे देखो कि परमेश्वर के पास ना स्कूल में कितना कितना अच्छा है। सो बच्चों को सिखाइए, वे परमेश्वर के उन पदों को दिखाइए जिस पद में से आप परमेश्वर को उनके सामने प्रकट कर सकें कि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, कैसे उसकी उपासना कर सकते हैं, उनको बताइए ताकि बच्चे जान सकें कि उनका कलीसिया में जाना, संडे स्कूल में जाना ऐसा ही नहीं है, लेकिन उनका परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर है। वो प्रेमी परमेश्वर, वो चिंता करने वाला परमेश्वर है, दया का परमेश्वर है। उसने कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। मेरे प्रियो, सुसमाचार केवल पाप के प्रति नहीं डरता, लेकिन सुसमाचार पाप के प्रति कायल करता है, लेकिन उसे बचा करके हमारे जीवन को और आगे बढ़ाता है ताकि हम उस यात्रा को पूरा कर सकें जो हमारी अंतिम यात्रा है और परमेश्वर के राज तक पहुंच सके। यह पूरा सुसमाचार है, परमेश्वर के अनंत जीवन तक पहुंच सके। और इस अनंत जीवन में पहुंचाने वाला है, इस रास्ते में ले चलने वाला यीशु मसीह हमारे साथ रहता है और वो हमें पहुंचाता है। प्रभु सहायता करे। क्या सचमुच में परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके मन छेदे गए हैं? क्या आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? मेरे प्रियो, क्या बपतिस्मा आपने लिया है या बपतिस्मा के लिए आप तैयार हैं? कैसे आप कलीसिया में कलीसिया के साथ जुड़ के आप एक साथ होकर लगे हुए हैं, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करने के लिए, उसके साथ शिक्षा पाने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए प्रार्थना करने लौलिन है, एक दूसरे की चिंता करने के लिए लौलिन है, एक दूसरे को उत्साहित करने लौलिन है और निरंतर परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करने। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर की आराधना करना सीखना है। हमारी प्रार्थना में सबसे पहले परमेश्वर की आराधना है, इसीलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई थी तो सबसे पहले वो एडोरेशन परमेश्वर की, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ओ सच में तेरा राजा है, वो परमेश्वर की महानता को देखते हुए उसकी आराधना करता है। मेरे और आपको सिखाए, सो परमेश्वर सहायता करे। आगे हम तीसरे अध्याय में जाएंगे और तीसरे अध्याय को आप पढ़ के तैयार रहिएगा, हम तमाम प्रभु के और महानता कार्य को देखेंगे। तो दूसरे अध्याय तक हम पहुंचे, कलीसिया स्थापित हो गई है, सुसमाचार फैल रहा है और अब फैलते हुए लोग विश्वास में आ रहे हैं, परमेश्वर के मसीह के देह में जुड़ जा रहे हैं और आगे चल करके साथ मिल करके उन सारे कार्यों कर रहे हैं जो कलीसिया की उन्नति के लिए, विश्वासियों की उन्नति के लिए और विश्वासियों के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, सुसमाचार के फैलाव के लिए आवश्यक है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम इन वचनों को सुनते हुए और अधिक समर्पित हों और प्रभु के कार्य में आगे बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे।